तो हमारा अगला हेडिंग है होली अलायंस अर्थात पवित्र संगठन। वियना में लिए गए निर्णयों को अस्थायित्व देने और यूरोप में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों की बराबर निगरानी करने तथा समय समय पर सलाह मशवरे के लिए इस तरह के अधिवेशन बुलाने की बात पर सहमति हुई। अलेक्जेंडर इससे पूरी तरह संतुष्ट और आश्वस्त नहीं हुआ। उसके कुंठाग्रस्त और रहस्यवादी मस्तिष्क में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वह एक भावुक और धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। उसके पिता की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और उसके लिए वह पूरी तरह निरपराध माना जाता था। अपराध बोध से ग्रस्त होने के कारण वह कुछ उदार और धार्मिक कार्यों में रुचि प्रदर्शित करता था। उसने ईसाई धर्म के सिद्धांतों के प्रतिपादन और प्रचार द्वारा एक प्रायश्चित करने का निश्चय किया था। इसी बीच उसकी मुलाकात बैरोनेस क्रूडेनर इसी बीच उसकी मुलाकात बैरोनेस क्रूडेनर और आर्कजेब से हुई और ईसाई धर्म के प्रति उसका लगाव रहस्यमय ढंग से बदलने लगा। होली अलायंस की रूपरेखा उसके मस्तिष्क में आकार लेने लगी। वियना में उसने विभिन्न देशों के प्रमुख प्रतिनिधियों से ईसाई धर्म के सिद्धांतों के आधार पर यूरोप में न्याय और धर्म पर आधारित समाज के स्थापना के संबंध में बात की। इस प्रकार अलेक्जेंडर का पहल और प्रेरणा ने होली अलायंस को जन्म दिया। इस समझौते के अनुसार रूस प्रशा और ऑस्ट्रिया के शासकों ने अपने को दया शांति और प्रेम के ईसाई बंधनों में बांध लिया। उन्होंने एक ईसाई राष्ट्र का सदस्य माना। अपने तीन राजवंशों को उन्होंने ईश्वर द्वारा निर्धारित एक ही परिवार की तीन शाखाओं में मान लिया। उनके अनुसार शक्ति का एकमात्र स्रोत होने के कारण संपूर्ण ईसाई जगत का सार्वभौम नियंत्रण केवल ईश्वर के हाथों में है। प्रबुद्धता के काल में यूरोप में बढ़ रहे बुद्धिवाद और संशयवाद की प्रक्रिया में यूरोपीय सभ्यता के ईसाई आधारों को रेखांकित करने का प्रयास स्वाभाविक था। जार के मन में इस सिद्धांतों के प्रति लगाव होना स्थितियों का सहज परिणाम था। होली अलायंस को तत्काल सफलता मिली। उसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि जो विभिन्न कारणों से केवल पोप और इंग्लैंड के शासकों ने अस्वीकार किया, इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति सहित यूरोप के सभी शासकों ने स्वीकार कर लिया। यूरोपीय परिवार में केवल तुर्की का सुल्तान धार्मिक कारणों से बाहर रखा गया। उस समय यूरोप के शासकों में अलेक्जेंडर सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। सीधे उसका विरोध करना आसान नहीं था, इसलिए ऊपर बहुत से देशों ने इसे मान लिया और यह तय हुआ कि राजनीतिक संबंधों में पवित्र धर्म, न्याय के सिद्धांत, उदारता और शांति को आधार बनाया जाएगा। यह स्वीकृति और सफलता सतही थी। मौन समर्थन के बावजूद मिटरनिक इसे ऊंची दुकान फीकी पकवान कहता था। उसने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है कि ऑस्ट्रिया और प्रशा ने होली अलायंस को मुख्य रूप से जार को खुश करने के लिए ही स्वीकारा था। तालिरान ने इसे हास्यपद समझौता कहा था। कासिलरिया ने इसे शानदार रहस्यवाद और बकवास करार दिया। उसने तो अपने प्रधानमंत्री को यहाँ तक लिखा कि जार का दिमाग पूरी तरह ठीक नहीं लगता। जब इंग्लैंड अपने देश की संवैधानिक व्यवस्था की आड़ लेकर इसमें शामिल नहीं हुआ तो यह मुख्य रूप से प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया के शासकों की पवित्र घोषणा मात्र बनकर रह गई। ऑस्ट्रिया का सम्राट सहमत हो गया, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि उसे इस सिद्धांत के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। उसने अलेक्जेंडर से कहा, यदि राजनीति का प्रश्न है तो मुझे अपने चांसलर से पूछना पड़ेगा और यदि धर्म की बात है तो पादरी से। उसकी सहमति का स्वरूप इस कथन से स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि प्रत्यक्ष होली अलायंस का उद्देश्य यूरोप में ईसाई सिद्धांतों के अनुकूल नियमित और व्यवस्थित करना था, लेकिन वस्तुतः उसका लक्ष्य एक तंत्र का समर्थन और क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का दमन करना था। अलेक्जेंडर ने कहा था, सारी दुनिया के कट्टरपंथी क्रांतिकारी और कार्बोनारी के सदस्य सरकारों को नहीं अपितु धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। वास्तव में उसे यह षड्यंत्र अपने निरंकुश तंत्र के विरुद्ध लगता था। वह स्वभाव से युद्ध प्रेमी नहीं था, जहाँ तक संभव हो वह दमन भी नहीं करना चाहता था। कभी कभी प्रजा के प्रति उदार भाव प्रदर्शित करने से उसका मन भावुक हो जाता था, लेकिन वह भ्रांतियों और कुंठाओं का शिकार था। अपनी सत्ता के हित में उसे दमन का भी समर्थन करना पड़ता था। होली अलायंस में दूसरों की रुचि नहीं थी और अलेक्जेंडर स्वयं अकेले कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसका पवित्र संघ सक्रिय नहीं रहा और उसकी मृत्यु के साथ ही दफन हो गया। प्रारंभ में जो थोड़ी बहुत सफलता मिली थी वह इसलिए कि अधिकांश लोग यह समझते थे कि इससे फायदा हो न हो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन जागरूक लोगों ने समझ लिया कि यूरोप के निरंकुश शासकों द्वारा छोटे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का यह एक षड्यंत्रपूर्ण और दूरगामी प्रयास है। होली अलायंस का व्यवहारिक स्तर पर कभी विशेष महत्व नहीं रहा। वे ही निर्णय क्रियान्वित होते थे जो समय समय पर यूरोपीय संघ द्वारा लिए जाते थे। होली अलायंस ने यह सिद्ध कर दिया कि ईसाई मत का बोझ उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास उसकी प्रतिक्रियावादी जीत के काल में भी कितना कमजोर और सतही था। श्रोताओं, हमारा अगला हेडिंग है यूरोपीय व्यवस्था अर्थात कंसर्ट ऑफ यूरोप। नेपोलियन से अकेले निबट पाना असंभव देखकर उसके प्रमुख विरोधियों ने समय समय पर सहयोग संधियां की थी। इन समावेत प्रयासों का उन्हें लाभ भी मिला था, इसलिए अपने सहयोग को वे अस्थायी रूप से देना चाहते थे। इसलिए रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने इंग्लैंड के साथ मिलकर एक चतुर्मुखी संधि कर ली थी। इस संधि का एक लक्ष्य यह था कि जब तक संधियों जैसे पेरिस और सोमो की संधियों को अस्थायी आधार नहीं मिलता, दूसरा लक्ष्य भविष्य को ध्यान में रखकर ही निर्धारित करना चाहिए। इंग्लैंड ने अवश्य यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण निर्णयों के क्रियान्वयन के प्रति हमेशा बाध्य नहीं रहेगा। इस तरह एक यूरोपीय व्यवस्था का जन्म हुआ जो सर्वथा ही अभिनव प्रयोग था। यद्यपि इस तरह के प्रयास पहले भी हुए थे, लेकिन इनका कार्यान्वयन नहीं किया जा सका था। 1713 में सेंपियरे ने यूट्रेक्ट की संधि पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात की थी, लेकिन तब यूरोप उसके लिए तैयार नहीं था। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि 1791 में ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ कोनिट्स ने एक प्रपत्र तैयार किया जिसमें देशों में व्यवस्था, देशों के बीच शांति, सीमाओं की अक्षुण्णता और संधियों में विश्वास के आधार पर प्रशा के शासक से मिलजुल कर प्रयास करने का आग्रह किया गया था। वह वोल्टेयर की तरह यह मानता था कि धार्मिक संस्थाओं और संस्कृति के माध्यम से जुड़े होने के नाते यूरोप एक परिवार की तरह है। क्रांति और नेपोलियन के शासन के दौरान इन विचारों का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका, परंतु नेपोलियन के पतन के बाद जो शुरुआत हुई उसमें कोनिट्स के विचारों के ही बीज थे। सम्मेलनों के क्रम में आखन या एक्सलासोपिए की कांग्रेस पहली थी। 3 वर्षों की राजनीतिक स्थितियों का आकलन करने के बाद 1818 में यह निर्णय किया गया कि अब फ्रांस से विजित देशों की सेनाएं हटा ली जाएं, क्योंकि वहां अब अशांति की संभावना नहीं रह गई है और राजा की सत्ता स्थापित हो गई थी। इंग्लैंड ने प्रस्ताव किया कि अब फ्रांस को भी संधि में शामिल कर लिया जाए। इस प्रस्ताव को मान लिए जाने पर सारी स्थिति बदल गई, क्योंकि फ्रांस पर कड़ी नज़र रखना ही संधि का प्रमुख उद्देश्य था। धीरे धीरे मित्र राष्ट्रों में मतभेद प्रकट होने लगे। जार चाहता था कि समय समय पर इसी तरह के सम्मेलन होते रहें और यूरोप की स्थितियों का अध्ययन तथा तदानुकूल कार्य होता रहे, लेकिन इंग्लैंड यूरोप में हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाना चाहता था। उसे बार बार सम्मेलन आहूत करने में भी कोई रुचि नहीं थी। 2 वर्षों बाद जब ट्रापो में दूसरी बार कांग्रेस हुई तो मतभेद खुलकर सामने आने लगे। स्पेन की समस्या प्रत्यक्ष थी। 1812 में स्पेन की प्रतिनिधि सभा कार्तेस ने एक उदार संविधान बनाया। नेपोलियन के पतन और पुराने राजवंश की पुनर्स्थापना के बाद फिर से कठोर सामंती तथा मध्ययुगीन कानून लागू कर दिए गए थे। 1820 में रिगु नामक एक कर्नल ने विद्रोह कर दिया और पुराने संविधान की घोषणा कर दी। उत्तरी प्रांतों में उसका समर्थन बढ़ने लगा। जब राजधानी मैड्रिड में भी हलचल मची तो फर्नांडिस ने संविधान स्वीकार कर लिया। नेपल्स में भी इसकी पुनरावृत्ति हुई और वहां भी स्पेन के समान ही संविधान की घोषणा की जाने लगी। मेटरनिक को चिंता हुई कि इस आग के उत्तर की ओर बढ़ने से तो ऑस्ट्रिया भी चपेट में आ जाएगा। उसे नेपल्स की जितनी चिंता थी उतनी स्पेन की नहीं थी। उसने ट्रप्पू में कांग्रेस का अधिवेशन आहूत किया। सम्मेलन में इंग्लैंड भी शामिल हुआ। अन्य तीन देशों ने किसी भी देश में क्रांति होने पर उसके दमन के लिए हस्तक्षेप करने की नीति का समर्थन किया। अलेक्जेंडर ने तो स्पेन में रूसी सेना भेजने का प्रस्ताव किया, लेकिन इंग्लैंड ने उसका विरोध किया। ऑस्ट्रिया और प्रसा भी रूस की शक्ति का प्रदर्शन नहीं चाहते थे और इस बात से डर गए कि रूसी फौज के पश्चिमी यूरोप में पहुँच जाने पर कहीं उनका प्रभाव तो कम नहीं हो जाएगा। इसलिए सशस्त्र हस्तक्षेप की नीति पारित नहीं हो पाई। साल भर बाद ही लाइबाह में सम्मेलन हुआ, जहां नेपल्स के शासक ने मित्र राष्ट्रों से अनुरोध किया कि उसके अधिकार वापस दिलाने के लिए हस्तक्षेप किए जाएं। इंग्लैंड के विरोध के बावजूद ऑस्ट्रिया को इस कार्य के लिए अधिकृत कर दिया गया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के बाद नेपल्स में फिर से पुरातन व्यवस्था लागू कर दी गई। इसी समय पीडमांट में क्रांतिकारी विद्रोह हुआ और ऑस्ट्रिया की सेना ने हस्तक्षेप कर इसे कुचल डाला। इटली में क्रांति के समर्थन की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। मेटरनिक ने स्पष्ट कर दिया कि संधि में शामिल हुए अन्य देशों की सहमति पर ध्यान दिए बिना ही वह ऑस्ट्रिया के हितों और क्रांति के विरोध के लिए ऑस्ट्रिया के निकटवर्ती देशों में अवश्य हस्तक्षेप करेगा। स्पेन की समस्या अब भी नहीं सुलझी थी। 1822 में वेरोना में चौथी कांग्रेस हुई। वहां स्पेन में विद्रोह का दमन करने के लिए हस्तक्षेप करने का निर्णय हुआ। स्पेन फ्रांस का पड़ोसी था, इसलिए इस पर फ्रांसीसी सेना ने हस्तक्षेप किया और स्पेन के विद्रोहियों को कुचल डाला गया। इस स्थिति में स्पेन के उपनिवेशों में भी थी, अब उसकी बारी थी। वहां के लिए भी अभियान शुरू हुआ था, लेकिन इसी बीच दो महत्वपूर्ण बातें हुईं। इंग्लैंड के विदेश मंत्री कास्लरिया की मृत्यु पर उनकी जगह कैनिन की नियुक्ति हो गई। यह मेटरनिक के लिए विरोध की शुरुआत थी। कास्लरिया चतुर्मुख संधि का विरोध करने में बहुत सावधानी बरतता था। कैनिन मुख विरोधी नहीं था। उसने हस्तक्षेप की नीति के विरुद्ध घोषणा कर दी थी कि हर राष्ट्र अपने लिए और ईश्वर हम सब के लिए। उसने वियना के विजेताओं के बीच हुआ समझौता भंग होते देखकर भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसने स्पष्ट कहा कि खुदा का शुक्र है कि अब कोई कांग्रेस नहीं होगी। यूरोप में तो इंग्लैंड की विरोध की अवहेलना भी हो सकती थी, लेकिन समुद्र पार के उपनिवेशों के संबंध में इंग्लैंड के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं था। दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति मोनरो ने अपनी यह प्रसिद्ध नीति घोषणा की कि अमेरिकी महाद्वीप में उपनिवेशों के लिए अब कोई संभावना नहीं है और यूरोप के देश इस ओर कुदृष्टि न डालें तो ठीक है। यह अमेरिकी महाद्वीपों में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधान्य की शुरुआत और वहां यूरोपीय उपनिवेशवाद के अंत का प्रारंभ था। ऐसी स्थिति में जोखिम उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा औपनिवेशिक देश नहीं थे और उन्हें प्रशांत या अटलांटिक महासागरों के उस पार जाकर हस्तक्षेप करने की कोई रुचि नहीं थी। फ्रांस अकेले कुछ करने की स्थिति में नहीं था और इंग्लैंड निश्चय ही उसका विरोध करता। इस प्रकार धीरे धीरे अमेरिका के उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे और उन्हें अमेरिका ही नहीं इंग्लैंड की भी मान्यता मिलने लगी। इस प्रकार इंग्लैंड न केवल यूरोपीय व्यवस्था से अलग हो गया बल्कि उसने इस व्यवस्था की विरोधी नीति भी अपना ली। जब पुर्तगाल में ही स्पेन ने हस्तक्षेप करना चाहा तो कैनिन ने पुर्तगाल के उग्रवादियों की मदद की। उसने कहा, हस्तक्षेप न करना एक बात है और हस्तक्षेप रोकने के लिए हस्तक्षेप करना दूसरी बात। यूरोप के दक्षिण पूर्व स्थित बालकन प्रायद्वीप में तुर्की साम्राज्य लड़खड़ा रहा था और वहां राष्ट्रवादी शक्तियां उभर रही थीं। रूस ने इसका लाभ उठाकर अपना प्रभाव क्षेत्र वहां बढ़ाया। इसके लिए उसने सेंट पीटर्सबर्ग में दो सम्मेलन बुलाए। इन सम्मेलनों में इंग्लैंड के सम्मिलित न होने से इसकी महत्ता कम हो गई। दूसरी बात यह कि बालकन प्रायद्वीप में ऑस्ट्रिया और रूस के हित टकराते थे और ऑस्ट्रिया रूस के एक तरफा निर्णयों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। रूस का प्रभाव बढ़ने का अर्थ था कि ऑस्ट्रिया का महत्व घटना। जाहिर था कि ऐसे सवाल पर कोई सहमति संभव नहीं थी। फ्रांस और इंग्लैंड भी रूस के साथ नहीं थे और संभवतः उनका सक्रिय विरोध करते थे। फलतः ये सम्मेलन असफल ही हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पूरी व्यवस्था इसके बाद ध्वस्त हो गई। इस व्यवस्था की असफलता अवश्यंभावी थी। एक शताब्दी के बाद स्थापित राष्ट्र संघ सारी आदर्शवादिता के बावजूद असफल हो गया। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ लड़खड़ा रहा है। कारण स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए समान आदर्श और समान हित या विभिन्न हितों के बीच महत्तम समीकरण की आवश्यकता होती है। यह चीज आज भी संभव नहीं है तो उस समय की उसकी कल्पना करना भी दुराग्रह होगा। भले ही ऊपर से यह नहीं चाहते हुए कि कोई क्रांति या तनाशाह सिर न उठा सके, लेकिन साथ ही यह भी वे चाहते थे कि उनसे कोई अधिक शक्तिशाली न हो जाए। फ्रांस और प्रसा अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए थे, लेकिन ऑस्ट्रिया तथा रूस नए उत्साह के साथ सीमा या प्रभाव विस्तार में लगे हुए थे। पूर्व समस्या इनके बीच झगड़े की जड़ थी। साथ ही इंग्लैंड का रवैया शुरू से ही अन्य विजेताओं से अलग था। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड एक उदार और जनवादी देश था। वहां अनुदार पूंजीपतियों और सामंतों के हाथ में सत्ता थी और वे अपने उपनिवेशों जैसे भारत में निरंतर हस्तक्षेप करते रहते थे, लेकिन यूरोप में वे हस्तक्षेप की नीति का विरोध करते थे। इससे एक तो यूरोप में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकता था, दूसरे उनके आदर्शवाद और प्रजातंत्र की हिमायत का मुखौटा भी बना रहता। सबसे बड़ी बात तो यह कि उनके आर्थिक हित सुरक्षित रहते थे। सैद्धांतिक स्तर पर यह बड़ा विरोधी व्यवस्था था। यूरोप ने क्रांति का स्वाद चखा था। बाद में थोड़ी कड़वाहट भले ही लगी हो, शुरू की सुखद स्मृतियां अविस्मरणीय थी। क्रांति की जो व्यवहारिक उपलब्धियां थीं उन्हें नेपोलियन भी नहीं नकार पाया, तो वे नेपोलियन की ही विजयों के साथ सारे यूरोप में पहुंची थीं। राष्ट्रवादी चेतना तेजी से बढ़ रही थी। मुक्ति संग्राम की प्रेरणा भी मिल चुकी थी। ऐसी स्थिति में समय की धारा के विपरीत बहने का प्रयत्न गलत था। विजेताओं के संघ ने यही प्रयास किया कि यथास्थिति बनी रहे और घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, लेकिन यह सोच अवैज्ञानिक थी। वे न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी प्रतिक्रियावादी भावों के पक्षधर थे। औद्योगिक क्रांति और मध्य वर्ग के बढ़ते प्रभावों के विरुद्ध मध्ययुगीन कृषि व्यवस्था और सामंती समाज का पोषण अब असंभव था। विकास एक अक्षुण्ण नियम है, उसका मार्ग अवरुद्ध किया जा सकता है, लेकिन समय के साथ अवरोध स्वयं नष्ट हो जाते हैं। मेटरनिक के नेतृत्व में इन लोगों की प्रतिक्रियावादी कोशिशें दमन कर सकती थी। राष्ट्र और जन विरोधी नीतियां अपनाकर स्वाभाविक विकास क्रम को कुचलने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन उनके लिए कालक्रम पर विजय पाना असंभव था। यही हुआ भी। मेटरनिक की सारी व्यवस्था 1848 की क्रांति में जलकर राख हो गई। इस कांग्रेस व्यवस्था का एक पक्ष और भी है। अपनी तमाम कमजोरियों और गलतियों के बावजूद यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में पहला कदम था। युद्धकाल में एक दुश्मन के विरुद्ध कई देशों का सहयोग स्वाभाविक है, लेकिन शांति काल में और शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का यह अनोखा उदाहरण था। कुछ लोग, विशेषकर अलेक्जेंडर, तो इतना उत्साहित था कि ईसाई सिद्धांतों के नाम पर ही सही वह सहयोग को अस्थायी स्वरूप देना चाहता था, लेकिन उसका कार्य समय से पहले लेकिन उसका कार्य समय से पहले का कह दिया जाता। समय आने पर जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य रूप से बढ़ा तो इन प्रारंभिक प्रयासों का इतिहास निश्चय ही काम आया। श्रोताओं, इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।